के गुणों के गान में हृदयमान महान जिन विचरे हमारे समय साल अनुशीलन पृष्ठ 200 अब तक जो चर्चा होती रही है उस चर्चा के संबंध में एक दफे फिर वो प्रश्न खड़ा करके उस बात को आगे बढ़ाते हैं। इन गाथाओं के बाद जो कलश आता है उसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि अज्ञानी अज्ञान भावों का ही और ज्ञानी आत्मा ज्ञान भावों का ही कर्ता क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथाओं में दिया जाएगा। वह कलश मूलतः इस प्रकार है, ये सिर्फ प्रश्न पैदा करने वाला कलश है, अगली गाथाओं का मैं प्रश्न पैदा करता है। और यदि आप ऊपर ऊपर से देखेंगे, पाठ पढ़ेंगे करेंगे ना, तो ये गाथाओं में भी यही बात लिखी है, कलश में भी यही बात लिखी है, आगे की गाथाओं में भी यही बात लिखी है। क्या? ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय। संतोष नहीं होता है कि क्या जवाब दे रहे हैं। देखो अपन पढ़ते हैं, ज्ञानमय एव भावा कुतो भवेद ज्ञानिनो न पुना अन्या अज्ञानमया सर्वा। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, ऐसा क्यों है? बस इतना कह दिया। इसमें कह दिया ऐसा क्यों है और गाथा में कह दिया ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय होते हैं। पढ़ो इसका पद्यानुवाद। बस उसमें तो ऊपर तो कलश में तो इतना ही लिखा ना कि ज्ञान मया एव भावो ज्ञान ना पुनः अन्य कुतो कुतो डाल दिया। बस इतना कि इसमें उसे प्रश्नवाचक बना दिया कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय क्यों है और अज्ञानी के सभी भाव, फिर नीचे कुतो डाल दिया अज्ञानमय क्यों है अन्य क्यों नहीं है, बस खत्म है। और इसीलिए कलश में थोड़ा खोला है, ख्याल में है ना, कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, क्योंकि जो इसमें शुभाशुभ डाल दिया, मूल कलश में शुभाशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि तो अज्ञान में भाव तो नहीं जानने को अज्ञान समझता है जगत, शुभाशुभ भाव भी अज्ञान है, ये इसकी समझ में नहीं आता। और गजब तो ये ज्ञानी के शुभाशुभ भाव ज्ञान है पर अज्ञानी के सुभाष भाव अज्ञान है, ख्याल में है ना। तो ये तो हम तो अज्ञान में नहीं जानता, बस नहीं जानने वाली बात को हम अज्ञान समझते हैं। देखा ना, ज्ञानी के सब भाव और शुभाशुभ ज्ञानमयी है। ये इसका जो कलश में कहा है उस बात को एक सोरठा में एक दोहा में भी कहा जा सकता था, मैंने इतनी कम बात कही है, लेकिन लोला जानबूझकर इसलिए लिया कि इसमें ये शुभाशुभ भाव अज्ञान ऐसा जोड़ना था, थोड़ी स्पष्टता आवे। बस आप समझिए ना, आप कहोगे कि क्यों जोड़ दिया, जोड़ना नहीं चाहिए, अन्याय है न्याय है, समझे ना, कि ये थोड़ी कि देखो ज्ञानी के सब भाव तो ज्ञानमयी है इतने में और शुभाशुभ और जोड़ दिया तो थोड़ा फर्क आया ना। ज्ञानी के जो स्वर शुभ भाव होती है वो सब ज्ञानमयी है और अज्ञानी के जो स्वाशुभ भाव होते हैं वे सब अज्ञानमयी है। अज्ञानी के वही भाव माने वही स्वाशुभ भाव, ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है? अब बस खत्म, तो कुतो से ने काम चला लिया था, इतना ऐसा क्यों, बस खत्म, सुनो लेकिन अपन उसे और जरा खोल के कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में ऐसा अंतर क्यों है और तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। जब दोनों के शुभाशुभ भाव हैं तो एक के भी अज्ञान भाव और दूसरे के भी ज्ञान भाव। अब देखो इसको जरा और खोल के देखें कि अपन सुबह जाके सब एक जन पूजा कर रहे हैं, अब उनको जो शुभ भाव हो रहा है, शुभ क्रिया हो रहा है, सबकी एक सी हो रही है, वो एक ही छंद बोल रहे हैं। और ये मान के मत चलो कि वहां ऐसे अज्ञानी हैं कि जो छंदों का अर्थ भी नहीं समझते हैं। जो ज्ञानी है वो भी समझते हैं और अज्ञानी भी शास्त्री है ना, और इसलिए वो भी उसका अर्थ समझते हैं मेरे है। समझ गया ना, सभी शास्त्री ज्ञानी होते हैं ऐसा थोड़ी है, और सभी शास्त्री अज्ञानी होते हैं ऐसा भी नहीं है क्या। तो अब तो बिल्कुल एकता है, फिर एक के उन्हीं सुभाषो भावों को अज्ञान कहना और दूसरे के उन्हीं सुभाषो भावों को ज्ञान कहना, और एक के उन्हीं सुभाषो भावों को बंध का कारण कहना और दूसरे के उसी सुभाषो भावों को बंध के अभाव का कारण करना कहना। ये बात यानी हमारे गले नहीं उतर रही है, इस बात को यहां पर थोड़ा सा खोला गया है, लेकिन तब भी अपन कलश से बंध के चले हैं। लेकिन पांडे राजमल जी आज से करीब 500 बरस पहले, 450-450 बरस होंगे, यहीं राजस्थान में अलवर को जाते हैं ना, तो कोटपुतली से अलवर से मुड़ते हैं तो वहां एक बैराठ नाम का गांव आता है जिसे आजकल विराट नगर कहने लग गए हैं। वे वहां रहते थे और वहां एक भट्टारक की गद्दी थी और वो एक विद्वान थे और भट्टारक के मठ में ही काम करते थे, माने उनकी आजीविका का साधन भी मठ ही था। जो भी भट्टारक जी काम उनको देते होंगे वो काम करते होंगे। वे बहुत अच्छे आध्यात्मिक विद्वान थे और समय सार के मर्म को जानने वाले थे। बनारसी दास ने नाटक समय सार जैसे ग्रंथ में उनके लिए ऐसा लिखा है कि पांडे राज मल्ल जिन धर्मी और नाटक समय सार के मर्मी। माने विशेष नाटक समय सार माने ये समय सार जो ग्रंथ है ना मूल, उसकी जो आत्मख्याति टीका और कलश, तो आत्मख्याति टीका को अमृतचंद्र ने नाटक कहा है, वे दोनों कलशों मिला करके। इसलिए उनके नाटक समय सार माने ये बनारसी दास ने लिखा वो ही नहीं, ये नाटक बना तो इसमें आया है, अपने किताब छपी तो उसमें नाटक समय सार लिख दिया और इसमें नहीं लिखा, तो हमारी समझ में नहीं आती वो बात। तो वो इसके बहुत मर्मज्ञ थे कौन, और वो इतने मुग्ध थे इस पर आत्मख्याति टीका और खासकर उसके कलशों पर, ख्याल में है ना, खासकर उसके कलशों पर, कि वो उन्होंने उन कलशों पर टीका लिखी, समय सार पर टीका नहीं लिखी और आत्मख्याति पे भी पूरी पे टीका नहीं लिखी, माने उसके एक हिस्से पर लिखी, यानी उसे आधी छोड़ देना और आधी लिखना, ये अपने आप में क्या बात सूचित करता है। सबसे पहले ये काम वो पांडे राजमल जी ने किया कि एक टीका के पद्य पद्यों पर का अर्थ लिखा और गद्य को बिल्कुल छोड़ दिया, गद्य को नहीं लिखा। और अब इसमें कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्या कलशों में समय सार सर्वांग आ गया है, मैं प्रश्न उठा रहा हूं खबर ना नहीं, और मेरे पास जवाब है जो कल ही आपको शांति जी पढ़ा रहे थे कि आप 12 गाथाओं के बाद चौथा कलश आता है, पर 3 कलश तो मंगलाचरण में ही चले गए है ना, मान पहली से लेके 12 गाथाओं तक बीच में कोई कलश नहीं है और उसमें 6वीं, 7वीं, 11वीं कैसी कैसी महत्वपूर्ण गाथाएं आई हैं। और अमृतन तो ये कहते हैं छोटा समय सार तो पूरा हो गया, क्यों अब तो विस्तार रुचि वालों के लिए हम आगे की बात करते हैं, और उनने एक भी कलश नहीं लिखे थे, पूरी विषय वस्तु छूट गई ना वो, है ना, मतलब लेकिन नहीं, बस उन्होंने ऐसा नहीं कर, पांडे राजमल जी संस्कृत के अच्छे विद्वान नहीं थे और आत्मख्याति उनकी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आत्मख्याति की टीका गद्य की ही कई बातें उन्होंने कलश टीका में खुलासा की है। टीका तो कलशों की लिख रहे, लेकिन उसी के गद्य में जो कोई खास बात थी और जो कलशों में नहीं थी उसका भी स्पष्टीकरण किया है क्या। इसलिए इसका मतलब आत्मख्याति पढ़ते थे और उनकी पूरी समझ में भी आती थी, मतलब ऐसा। और आप जानते हैं कि जम्बू स्वामी चरित्र और कई उनके ग्रंथ हैं वो प्योर संस्कृत में लिखे हुए हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उन्हें जैसी सुंदर संस्कृत बड़े अच्छे अक्षरों में देखने में नहीं मिलती है। और कहा तो यहां तक जाता है कि पंचाध्यायी भी उन्हीं पांडे राजमल जी की किताब है। अब समझ लो पंचाध्यायी की महिमा अभी तुमने सुनी होगी है ना? आज से नहीं, जब बनारस में ये सब विद्वान पढ़ते थे, तेंसुदास जी वगैरह और ये सब पंडित मक्खनलाल जी वगैरह भी सब, तब गोपाल दास जी बरैया जो विद्वान थे जैन दर्शन के बहुत अच्छे, और वहां तो सब ब्राह्मण विद्वान थे पढ़ाने वाले, बनारस में ज्यादा अच्छे विद्वान थे नहीं, तो ये वहां गए थे शिखर जी की यात्रा पर, मार्मिक बात समझना। तो बनारस में उस विद्यालय में भी पहुंचे तो वहां ये सब विद्यार्थी थे उस वक्त, मक्खन लाल जी, खूबचंद जी, बंशीधर जी, नया अलंकार, देवकी नंदन जी, ये सब पंडित वहां पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। तो इन लोगों से उनकी चर्चा हुई होगी, तो वहां तो वो क्यों पढ़ाया जाता, उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें जैन सिद्धांत पढ़ना है तो तुम मेरे पास मुरैना आओ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वहां उनने निमंत्रण दिया, बरनी जी ने वहां पर विद्यालय खोला था, उसमें ये सब पढ़ते थे, और बरनी जी भी साथ में पढ़ते थे, क्योंकि बरनी जी बहुत बड़े विद्वान नहीं हो गए थे उसके पहले, ख्याल में है ना, लेकिन उनकी प्रेरणा से खुला था, ये बात सही है। और जब वो यहां आए तो उन्हें पंचाध्यायी पढ़ाई, पंचाध्यायी की महिमा आपको बताने के लिए इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं क्या। और वो सब लोग उस पंचाध्यायी पे इतने रीझे थे कि सबने, उनमें से देवकी नंदन जी ने भी पंचाध्यायी पे टीका लिखी और पंडित मक्खनलाल जी ने भी पंचाध्यायी पे टीका लिखी। मैंने दो पांच चार पांच विद्यार्थियों में दो दो गज विद्यार्थी थे दिग्गज, जो समाज में पूरी जिंदगी समाज उनसे प्रभावित रहा, यद्यपि दो ग्रुपों में समाज बटा था, एक ग्रुप मक्खनलाल का और एक ग्रुप देवकी नंदन जी का। देवकी नंदन जी आपके कारण जाने थे, बाद में इंदौर आ गए थे और ये मुरैना विद्यालय के हेड थे, और जब ये सहपाठी थे तो आपस में नोकझोंक भी बहुत होती थी, दो ग्रुप बन गए थे और फिर वो शांत सागर की वजह से 20 पंथ में चले गए थे, इकट्ठा 13 पंथी थे क्या। थोड़ा सा मैं दो विद्यार्थियों की आपस में कैसी मजाक होती है वो बात सुनाना चाहता हूं, थोड़ा एक मिनट का। जब उनकी बहुत ज्यादा बहस हुई तो देवकी नंदन जी बोले, ज्यादा गड़बड़ मत कर मक्खन, तू मक्खन है और मैं देवकी नंदन। वैसे ही चाट जाऊंगा पर डकार भी नहीं लूंगा। देवकी नंदन का मतलब समझ आया, श्री कृष्ण जिनको मक्खन बहुत प्रिय था, गोपियों का मक्खन चुरा चुरा के खाते थे ना क्या, कि तू मक्खन है और मैं देवकी नंदन हूं, समझे ना, माने ऐसे ही का ऐसा बिना चबाई निकल जाऊंगा और फिर डकार भी नहीं लूंगा। तो उन दोनों ने पंचाध्यायी पर टीका लिखी। अब सुनिए, और कांजी स्वामी का मक्खनलाल जी ने डटकर जीवन भर विरोध किया, तो समझना। देवकी नंदन जी पक्ष में भी नहीं थे ज्यादा, विपक्ष में भी नहीं थे, लेकिन सरसेर हुकुमचंद की नौकरी करने लग गए थे, जैसा हुकुमचंद जी का रुख रहता था वैसा उनका हो जाता था, रहता था आप समझे वे गए हुकुम दीजिए शेर जी, तो वे भी साथ में चले गए। और मैं मेरे सब ऐसा राहुल की बात ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन एक कट्टर विरोध रहे हम जब हम पढ़ते थे तब से लेकर और अंत तक जब तक वो जिंदा रहे और हम गुरुदेव के अनुयायी हो गए तब तक भी, ख्याल में आई ना। लेकिन एक बात जो पंचाध्याय में मक्खनलाल जी ने लिखी है वो गुरुदेव को पसंद थी, क्या कि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है, बाकी सब पंडित नहीं मानते थे, लेकिन उस पंचाध्याय में मक्खनलाल जी ने ये बात लिखी थी और वो अंत तक मानते रहे। और उन्हीं के साथी रंजन मुख्तार वगैरह और ये सब विद्वान जो लालवा ये नहीं मानते रहे, लेकिन वो ये कहते रह गए। और उनकी जो पंचाध्याय थी गुरुदेव के पास स्पेशल थी, और गुरुदेव ने हमको वो पंचाध्याय लाल भेंट में दी थी कि देखो ये तुम्हारे गुरु जी तो लिखते हैं इसमें, क्योंकि हम तो उनके पास पढ़े थे ना 5 साल, हम मक्खनलाल जी के पास पढ़े थे, माने कान्जी स्वामी के जो कट्टर विरोधी थे जब हम पढ़ते थे तब से भी और अंत तक। और हम उसके बाद में जब हमको गुरुदेव का समागम हुआ तो हम पूरे इसमें आ गए और वो उधर ही बने रहे, और हमारी आपस में गुरु शिष्य की मर्यादा भी चलती रही और नोक झोंक भी चलती रही। क्या तो मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पंचाध्यायी कितनी महिमावंत किताब थी है? उस वक्त हम लोगों के दिमाग में भी पंचाध्यायी का विद्वान माने सबसे बड़ा विद्वान, और पंचाध्यायी की भाषा ऐसी प्रवाहमयी है जैसे आप गद्य पढ़ रहे हो, छंद पढ़ते जाइए और अनुवाद जैसे आप अनुवाद करते हैं, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। और उसका मेरे पर बहुत प्रभाव है, इसलिए जो मेरे पद्यानुवाद होते हैं ना उनमें आपको अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पंचाध्याय जैसा प्रभाव देखने में मिलेगा, वो इनडायरेक्ट रूप से जो प्रभाव जो हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है क्या। लेकिन जब नए चक्र हमने लिखा तब पंचाध्याय के नयों से हम सहमत नहीं हो सके, क्या समझिए आप। और हमने उसका अलग चैप्टर लिख के सारा उनका जो वर्णन है गहराई से अध्ययन करके वो लिखा भी, और उसकी कमियां भी हमने उसमें बताई जो आपको नए चक्र पढ़ाने वाले विद्वान पढ़ाते होंगे। और शायद इस साल शिविर में अभय कुमार जी वो पंचाध्यायी के नए ये प्रकरण लेने वाले हैं। इतना मैं आपको संबंध इसलिए बताया कि अब आप विद्वान बनने वाले हैं थोड़ा आइडिया रहे, ख्याल में आए ना। तो वो अब ये बात सुनिए, ये राजमल जी की वो किताब है और हमारे गुरु मक्खनलाल जी उसे अम्बे चंद्र की मानते थे, क्या क्या वो कहते थे कि ये अमरचंद की है, और वो उनके ही प्रमाणों से सिद्ध करते थे कि देखो भाषा अमरचंद जैसी है, वही बहुत सी बातें जो आत्मख्याति में आई हैं और अमरचंद के ग्रंथों में आई हैं, तो वो बातें इसलिए पंचाध्याय में मिलती हैं, इसलिए ये भाषा वो ये पंचाध्याय अमरचंद की है ऐसा वो मानते थे। बाकी सब लोग विद्वानों से राजमल जी की ही कहते हैं ऐसा अभी तक भी है, मैं समझता हूं कि राजमल जी की ही है। तो अब राजमल जी संस्कृत के कितने बड़े विद्वान थे अब आपको इसका अंदाजा लगा होगा। अब वो भट्टारकों के यहां सर्विस करते थे क्या, लेकिन उनके साहित्य में उन भट्टारकों की भट्टारकी पना का रंज मात्र भी कहीं तक नहीं था। ऐसा लगता है भट्टारक जी ने उनको इस मामले में कोई छेड़खानी नहीं की, और वो शायद भट्टारक जी इतने विद्वान भी नहीं हो कि वो इस बात के उसकी बात को ज्यादा समझते हो, तो इस मामले में वो उनको ही प्रमाण मानकर और चुपचाप इस बात को सुनते रहे होंगे। और भट्टारकों ने इस अध्यात्म को काफी संरक्षण दिया, कारंजा के भट्टारक ने सबसे पहले समयसार छापा है, समयसार की प्रति छपी है ना वो सबसे पहले कारंजा के भट्टारक ने छापी, और उसके बाद में श्रीमद रायचंद के भक्तों ने आगाज से छापी, समझे ना। अब उसके बाद में स्वामी जी ने छापी, ये दिगंबर होंगे तो अपने कुल को होश ही नहीं था इनका। कैलाश चंद जी तो क्लियर कहते थे राम दिगंबर तो बस मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणियों मंगलम कुंद कुंदारी इतना ही जानते थे। हमने उनके समयसार ग्रंथ है और नाम भी सुना था कहीं, तो कभी खोल के देखा ही नहीं था ऐसा वो क्या। अब इस प्रकरण से क्या लेना देना है इसका? ये लेना देना है कि इस प्रकरण में उन्होंने जरा खोल के बात की, कलश टीका वालों ने खोल के बात की, तो बनारसी दास ने उस बात को पकड़ा, क्योंकि बनारसी दास तो साफ शब्दों में लिखते हैं कि भैया मैंने तो, मैं संस्कृत के विद्वान नहीं थे, समझे, कि मैंने तो जो समय सार जो है वो तो कलश टीका पढ़ करके समझा है। देखो उनके ज्ञान का सोर्स दादा सिर्फ इतना ही था, इसलिए कोई एक आध बात ऐसी आवे तो उसमें घबराना नहीं, उससे आक्रांत होने की जरूरत नहीं है, मेरा अंदर समझिए ना। तो कलश टीका उनका आधार था, तो वो उनके पद्यों में वो कलश टीका की वो प्रकरण भी आए हैं जो आत्मख्याति में संस्कृत गद्य में है, पद्य में नहीं है। क्या संस्कृत गद्य में है और पद्य में नहीं है? जैसे एको मदरा तजद सुदूरा ब्राह्मणत्वादि महामान, अब है शायद धोबी वाला दृष्टांत गद्य में है पद्य में नहीं है शायद, मुझे अभी कह रहा हूं, और उन्होंने पकड़ा उसको बनारसी दास जी ने और उसे लिखा, ऐसा कई जगह आप मिल जाएगा। अब बनारसी दास का पूरा नाटक समय सार भी हमने गहराई से पढ़ा, फिर हमने कलश पद्यानुवाद क्यों लिखा, जरूरत नहीं थी कि वो बोले पद्यानुवाद था, लेकिन पद्यानुवाद था नहीं ना, कई पद्य तो छूटे हुए हैं, उनको उन्होंने एक अक्षर भी नहीं लिखा, और कई पद्यों पे एक एक पद्य पे छह छह छंद लिख दिए, क्योंकि वे तो कलश टीका को जानते थे, कलश टीका में जो विषय वस्तु उन्हें अच्छी लगी वो बनाते गए, और उन्होंने सलंग नहीं बनाया था, जब जो प्रकरण अच्छा लगा उस पर उन्होंने चार छंद लिख दिए और जाके सभा में सुना दिए, लोगों ने याद कर लिए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लिए और गाने लग गए, और रास्ते में चलते चलते जैसे आजकल सिनेमा के गाना गाए जाते हैं, बनारसी दास जी के छंद आगरा की गलियों में गाए जाते थे, ऐसे फिर नाटक समय सार के छंद। बाद में उनने या किसी उनके भगत ने उनका संकलन करके और थोड़ा व्यवस्थित करके पर उसे छपाया, और ये तो सोनगढ़ ने किया ये काम, तो कि भाई ऊपर पूरा छपाया, और ये जो भाव है ये समय सार के किस कलश का है, तो उस कलश को नीचे दे दिया, कोशिश करी, क्योंकि कई जगह तो मिलता ही नहीं ना, क्या ये जो नाटक समय सार छपा है ना, ये मेरी संपादन में यहां छपा था नेपुर प्रिंटर से सबसे पहले, जैसे सोनगढ़ में छपा था, तो वो इसमें बहुत मेहनत, कौन सा छंद कैसा क्या वहां से भी हुई थी, पर हमने भी बहुत मेहनत की थी। अब ये इस कलश को पढ़िए आप, ये जो 66वां कलश का अपन ने ये पढ़ा ना हिंदी का, ज्ञानी के सब भाव स्वभाव ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्यों है? तो देखो इसके अर्थ में अपन ने सीधा छंद को ही रखा, अपने जो उसमें पद्य में जो सुभाषु भाव जोड़ दिया वो अपन ने इसके अर्थ में नहीं जोड़ा। देखो पढ़ो, यहां प्रश्न है कि ज्ञानी को ज्ञान भाव ही क्यों होते हैं, उसके अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते, इसी प्रकार अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं, उसके भाव ज्ञानमय क्यों नहीं होते। बस जो उसमें था उसका अक्षर टू गद्य में लिख दिया, पद्य में अपन ने किया वो इसमें नहीं जोड़ा। अब अपन ने राजमल जी ने लिखा उसके अनुसार जो बनारसी दास ने लिखा इसी बात को, ज्ञान बंत के भोग निर्जरा हेतु है, अब देखिए ऊपर ये छंद लिखा है बनारसी दास का और नीचे हमने लिख दिया कि 66 में छंद लिख दिया कि ये इसका पद्यानुवाद है, अब इसका पद्यानुवाद कहीं से है कहीं, क्या बात आई है इसकी इसमें? हाँ अजय जी पढ़ो आप, अरे थोड़ा तो आपसे हिंदी तो पढ़ ली ना, हिंदी गद्य और इस छंद कि ज्ञानी के भोग निजरा के कारण, वो भी हमने लिख दिया, इसका भी लिख दिया, और उसके अज्ञानी के बंध के कारण है, यह आवाज आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है, यह मेरे हृदय में नहीं बैठती है, मुझे इसमें अन्याय प्रतिभाषित होता है, क्योंकि यह भाव अज्ञानी के बंध के कारण है, बेही भाव ज्ञानी के निबंध के कारण, ये कैसे हो सकते हैं, ख्याल में आई ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरु उसका उत्तर देते हैं, अब बिल्कुल नहीं है ना उसमें, यानी उनने पूरा भाव यहां एब्जॉर्व किया, इसमें से नहीं, कलश टीका में से, कलश टीका में उनने ऐसा खोला कि ज्ञानवंत के भोग निजरा हेतु है। अब ज्ञानवंत के भोग निजरा हेतु है, ये कहां लिखा, ये निजरा की बातें नहीं है, इस छंद निजरा अधिकार का नहीं है, ऐसा लगता है कि निजरा अधिकार की बात चल रही हो जैसे, नहीं लगती है, इसलिए मैंने कहा ना ये तो बस उन्होंने उनने गा करके बना दिया, अब उनको लगा कि जी इससे मिलता जुलता तो हमने यहां रख दिया, चाहते तो निजरा अधिकार में रख देते किसी छंद के नीचे, मतलब मैं तुमको ये सब खोल के बता रहा हूं कि जिससे तुम चाहो तो वहां ले जा सकते हो इस छंद को, मेरा मतलब ले जा सकते हो, मैंने अपने कम से कम विवेक से किताब लिखो नहीं उसमें ले जाओ कि नहीं ले जाओ, एक किताब लिखो कि नहीं लिखो, लेकिन अपने विवेक से तो समझ गए ना, ये बात निजरा जैसी नहीं लगती है कि ज्ञानी के भोग निजरा के कारण है, अज्ञानी को वो बनने फल देते हैं, यह बात हृदय में नहीं आती है। तो इसके लिए यानी नाटक समय सार होते हुए भी कलश प्रद्यानुवाद की जरूरत क्यों है, आए समझे, और कलश प्रद्यानुवाद लिख गया तो नाटक समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि एक अपने कलश में नहीं है क्या, इसलिए अनुशीलन में तो है लेकिन कलश में नहीं है, टीका में भी नहीं, आप समझ गए ना। अब इसमें से ऐसा अर्थ निकालना, आप समझो, सोचो जरा, फिर पढ़ते हैं, देखो इस कलश के अर्थ पर विचार करते, ऊपर से पढ़ रहे हैं पेज नंबर 201 पर, कलश के अर्थ पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में क्या दम है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं, एक भी बात हुई, ज्ञानी के ज्ञानमय होंगे, ज्ञानी अज्ञानी कि जैनी जैनियों जैसे काम करते हैं, मुसलमान मुसलमानों जैसे करते हैं, अब इसमें काय का प्रश्न है, इसमें काय की बात है, मैंने भाषा मतलब उसमें से वो गंभीर अर्थ छिपा है लेकिन सर्वजन की समझ में नहीं आ सकता, कभी कभी विद्वानों की समझ में आना भी बहुत मुश्किल है, मैंने अमृतन को तो ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कह दिया, क्योंकि बहुत जितने गहरे में पहुंचे हुए आचार्य थे उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी बात में कोई अस्पष्टता रह गई है, पर गहराई में जाते हैं तो यह भाव भाषित होता, ये स्टडी है, इसको अपना अध्ययन बोलते हैं ना, कि रीडिंग और स्टडी, अध्ययन और पढ़ना और अध्ययन, आपने समय सार पढ़ा है लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया है ना, पढ़ा है माने रीडिंग की है और स्टडी माने अध्ययन किया है ना, विद्यार्थी उन्हें कहते हैं जो अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी उन्हें नहीं कहते हैं जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग तो समाचार अखबारों की होती है रोजाना, अखबारों की सुबह से उठ के रीडिंग करते हैं ना, ऐसा समय सार नहीं पढ़ा जाता है, पर गहराई में जाते हैं तो यह भाव भाषित होता है कि दया दान भक्ति आदि शुभ भाव तथा विषय भोग आदि अशुभ भाव, अभी अजय खोला तो नहीं लेकिन इसमें से निकाल रहे, यदि ज्ञानी के हों तो उन्हें ज्ञान भाव भावमय कहना, और ये कौन दयादान भक्ति शुभ भाव और विषय भोग आदि अशुभ भाव, और अज्ञानी के हों तो उन्हें अज्ञानमय कहना, अब ये प्रश्न खड़ा होता है, अब ये प्रश्न लगता है जो प्रश्न जैसा है जिस पर हम पूरे के पूरा प्रकरण चलाना चाहते हैं, कुंद कुंद हमें समझ में आए ना, कि भाई उन्हीं भावों की बात है कि वही खाना ज्ञानी खा रहा वही अज्ञानी खा रहा, वही पूजा वो कर रहा वही पूजा वो कर रहा, वो अपन ने कल कितना लंबा लंबा थोड़ा थोड़ा बताया था ना, तो लोगों को कुछ अच्छा भी नहीं लगा होगा अगर ये पूजा की आलोचना कर रहे हैं, भाई वो आचार्य कह रहे कि यदि तुम्हें सम्य दर्शन नहीं है तो तुम्हारे सब भाव अज्ञानमय है, बोलो अब हम क्या करें, इसे कुछ होने वाला नहीं है, शाम को सुमंत प्रकाश जी ने भी ये बात कही थी ना, کہ تم کیا سمجھ رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو ان کی برابری بھائی, ہم بھی تو نہیں بیٹھے تھے اور انہیں تو آلس آ رہا تھا, ہمیں تو آلس بھی نہیں آ رہا تھا, اور بے تو بس ایسے بیٹھے تھے اداس تھے اور ہم تو ناچ رہے تھے گا رہے تھے. کیوں تو ہم کو زیادہ پنیہ بندھنا چاہیے, کیوں پنیہ تو ہے ہی نہیں تمہیں, اور بندھ رہا زیادہ کیا, کیونکہ ایریا سمتی پوروک تھوڑی ناچ رہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ناچنا دھرم میں کب سے کیسے شامل ہو گیا. سب سو دھرمند سو دھرمند سو دھرمند کو لیتے ہیں, اب بھگوان کا جنم ہوا تھا تو وہ ناچ رہ گیا تھا دروازے پہ, ایسا ناچنے لگ گیا تھا ایسا, گرودیو کا کوئی واقعہ پڑھ لیا پنچکرنا کے موقع پہ بولا ہوگا تو. ارے وہ سو دھرم اندر وہ تانڈو نرت سے آپ کہتے ہو, یہ تانڈو نرت تو کرنے والے شنکر بھگوان تھے, وہ جو ان کے یہاں آتے ہیں نا, یہ تو صرف جب تیرتھنکر کا جنم ہوتا اسی ایک دن ہی کرتا ہے, پہلے ٹریننگ بھی نہیں کرتا پریکٹس بھی نہیں کرتا اور کبھی ایسا ناچتا بھی نہیں. دو ساگر میں جتنے بھی تیرتھنکروں کے جنم کلیانک میں جاتا ہوگا وہ صرف اتنی بار ہی وہ ایسا ناچتا ہے. کیا تو کائم ہے بھگوان, وہاں تو ایک بالک پیدا ہوا ہے ایک راجا کے یہاں جو بھوشیہ کا تیرتھنکر بننے والا ہے, بس اسے اتنا پتا چل گیا ہے, خیال میں آئی نا. تو اس وقت وہ ناچا, وہ ارند بھگوان کے سموشن میں جا کے ناچا ہو یہ بتاؤ, اور تم سموشن میں ناچ رہے. سموشن میں ایسی اردنتا برداشت کی جا سکتی ہے کیا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا شانتی جی, آپ تھے کہ نہیں تھے, وہاں پر تھا ہمت نگر میں کہیں گجرات میں ہو رہا تھا ودھان. تو میں تو ہمیشہ ہی کہتا رہتا تھا کہتا رہتا ناچنے ماچنا کے بہت برود رہا ہوں. یہ سنتا بہن وغیرہ کہتے مجھے کو پکڑ پکڑ کے یہاں بھی کھڑا کیا, لیکن وہ میرے سے ایسے میرے پیر ایسا نہیں کروا سکی, ہاتھ سے ذرا میں نے ان کے ساتھ ایسا سب وہ ضرور کر دیا. اور بابو بھائی ناچتے تھے تھوڑا, تو میں بابو کہ ودوانے کا کام ناچنا ہے, میں بول جانا ہوں, میں نے کبھی نہیں اپنایا اسے. تو جی ابھینندن کمار جی جو نچانا شروع کیا, پہلے آدمیوں کو نچایا پھر عورتوں کو نچایا پھر ان کو, پھر دونوں ساتھ ناچو. اتنا غصہ آیا میرے کو, دیکھو ابھینندن جی اب تمہاری کھٹیا کھڑی کروانی ہے, اب میں پورا برتن تمہارے اوپر کروں گا, یہاں نہیں گاؤں گاؤں میں. بولو کیا کہے کیا ہے, یا تو تم پرتیجا کرو ہی بھگوان کے سامنے کہ بھوش میں ایسا نہیں ہونے کریں گے ہم, نہیں تو میں آج پھر میں اس کھٹیا کھڑی کرتا ہوں. حد ہو گئی پھر اس میں ساتھ ساتھ نہ دے, تم بھیمتاری کیسے لگا ہو کتنا کیا لگا, کم سے کم میری اپستھتی میں تو ایسا موقع نہیں آیا میرے سامنے. تو کیا کہاں پڑھ رہے تھے اپن, بھوگ آدی لکھا اس کے, وہ ایسا پسند وہ اب کہہ رہا ہوں دونوں کا, جو میں نے اتنا کل کہا تھا نا کہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے, ایک بند کر رہا اس سے کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, ایسا یہ سمجھ سار کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا. یعنی مان لیجئے کہ ہم تو اس کا ارتھ کر رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کر ہی نہیں رہے آپ کے, کیوں؟ لیکن یہ فیکٹ وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اچھل کوند میں دھرم نہیں ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایریا سمیتی پوروک نہیں ہو سکتا ہے, تو بہت سے جیو جنتو ہم مر سکتے ہیں, ہم باہر کے جیون میں ایریا سمیتی پوروک رہے تو نہیں رہے, لیکن مندر میں تو ہمیں ایریا سمیتی پوروک دیکھ کے چلنا چاہیے. کیوں مندر میں ہی کوئی کیڑا ہمارے پیر کے آگے نیچے سے مر جائے یہ اچھی بات تو نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, جس میں ایک مندر ایک ہے نا کہ ناچنے کی بات, اب یہ جلوسوں کی بات, یہ کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے جلوس, یہ سارے ہاتھی جو آج کل آدمی کو کچل دیتے ہیں, ہمارے سامنے ہمت نگر میں انہیں ایک مہیلا کو بالکل بھگوان کا ابھیشیک کے کیمپ پہ آگے سامنے ہی پیر رکھ دیا اور وہ وہیں ختم ہو گئی. کل ہاں وہ یہاں یہاں جے پور میں, لیکن میں کہتا ہوں یہ آج یہ سب ایریا سے سمتی پوروک چلیں گے, घोड़े जो भी जितने जितने लोग आपने हमारे इतने हाथी इतने घोड़े इतने दे इतने राज ये सब इंद्रिय समिति पूर्वक चलेंगे, वो तो जमीन प्रासुक हो जाती है इनके चलने से, वहां एक जीव जंतु नहीं बचता है। और वहां जीव जंतु कितने होते होंगे बोलिए। अरे जिन इन आडम्बरों को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ख्याल में आई ना। इनमें विंच मात्र धर्म नहीं है, और कम से कम लोगों को ये भ्रम तो पैदा मत करो कि तुमने बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो, ये करके राग रंग का पोषण करके उसमें धर्म कर रहे हो, ऐसा अपराध हमारे चित्त में तो हमसे तो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, भोगादि के क्या अज्ञानी के उक्त भावों को अज्ञानमय कहकर बंध के कारण बताना, और ज्ञानी के उक्त भावों को अभी तक खोला नहीं था, कलश में खोला नहीं है, अमृतंद ने ऐसा खोला नहीं है, बस ज्ञानमय कहकर बंध का कारण नहीं, ऐसा कहना न्याय संगत है। वास्तविक प्रश्न तो यह है, ये उपाय इतने ही कह रहे हैं, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय क्यों है, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय क्यों है, ये प्रश्न अमृतचंद का सुनना। अभी कहोगे साहब अमृतचंद की तो आवित्य भगत हो, आप आलोचना कर रहे, कल तो उनकी आलोचना कर रहे, जाजिंद की करने लगे, हम कोई की नहीं कर रहे भैया। और उत्तर भी क्या, देखो गाथा पढ़ो जरा, उत्तर अगली गाथा है प्राणमया भावो प्राणमयो चैव जायते भावो अब प्रश्न था, अब ये उत्तर क्या है, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं इसलिए ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं इसलिए अज्ञानी के अज्ञानमय होते हैं, ये जवाब दिया। अब आगे समझो उत्तर जवाब क्यों, यानी हमारी तो समझ में नहीं आया, चलो आगे और बता दे, गाथा ही गाथा है पढ़ो जरा, तुम गाथाओं से पाठ करवाता हूं ना तुमसे, इसलिए करवाता हूं समझो। अरे मैं भी सब सुनता हूं वहां से, एक एक शब्द धोती पहनता रहता हूं, सुनता रहता हूं, स्कूल में ताली रखता हूं मैं, है ना। तो दो दिन से तुम सुबह के चेत के पहले पाठ नहीं कर रहे हो क्या, तो सब पता है मुझे, सुनो क्या गाथा, कणग मया भावादु जायन्ते कुंडलादयो भावा, अन्नानमया भावा अन्नानो बहुविया विजायन्ते, क्योंकि सोने के से गहने सोने के ही बनेंगे, सोने के सोनों से गहना बनाएंगे तो वे गहना भी सोना ही होंगे, सोने के ही बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, कुंडलादि, कुंडलादि क्या है, कुंडल कान में पहने जाते हैं। और देखो अजय मया भावादो जायंते दुकटगादि, और जो लोहे से बनेंगे गहने, क्यों वे लोहे के ही बनेंगे, ठीक है, क्यों ठीक है, अरे लोहे के गहने नहीं बनते, इसलिए लिखा है उन्होंने कटक आदि, आप समझे ना, वहां लिखा है कुंडल आदि, और यहां जो लोहे की जो चीजें बनती हैं, आप समझे ना, उसका उदाहरण दिया है ना, औजार अपन ने उसमें किया है, खोला है, देखो एक अनुवादों में, इसके अनुवादों में कहा है कि लोहे के गुमसन गोंदे कवर कटक आदि और कुंडल आदि, माने गहना नहीं है, लोहे के गहना नहीं, आप समझे ना, जो 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 चीज लोहे समझ लो, लोहे की बेड़ियां जेल में डालने वालों को बनाई जाती हैं, कोई भी समझे ना, कड़े वहां कुंडल यहां कड़े, तो कड़े लोहे के बनते हैं, ख्याल में आई ना, जो जेल वालों को पहनाए जाते हैं, और आजकल जो गुंडे लोग पहनते हैं वो ऐसा एक बनाते हैं ना जिसमें मारो तो सिर फट जाए, ऐसा नोकदार, वो लोहे का बनता है स्टील का, समझे ना, कतक समझ गए ना, ये बनते हैं। मैं अभी तो क्या जवाब दिया, इसलिए ज्ञान से जो भाव बनेंगे वो ज्ञानमय होंगे, अज्ञान से बनेंगे अज्ञानमय। ये जवाब देते जा रहे, उदाहरण पूछा तो उदाहरण दे दिया। अब उदाहरण से भी क्या स्पष्ट हुआ ना, अब सुनो, कलश टीका वाले नहीं होते, फिर बनारसी दास नहीं होते, समझे ना, फिर जयतन जी छावड़ा नहीं खोलते, फिर स्वामी जी नहीं समझाते, तो अपनी समझ में आता? और इन सब ने समझा दिया, फिर भी हमें तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों इस जगत को, क्यों है ना, जो उसमें इसकी जरूरत है, मतलब समझ रहे, इसलिए इसकी भी हमें कलश टीका की भी जरूरत है, हमको समय साध नाटक की भी जरूरत है, हमको प्रयत्न की टीका भी जरूरत है, स्वामी जी के प्रयत्न भी जरूरत है, हमारे और जितने हो सब जरूरत है। क्यों, क्यों उसमें कोई नई बात आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो फिर आप देख लो, नहीं आपको आ रही हो छोड़ दो। देखो अब लौट के वहीं चलो, पांडे राजमल जी ने कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते हुए इस प्रकार के संकेत दिए हैं, यही कारण है कि बनारसी दास जी ने इस कलश का भावानुवाद इस प्रकार किया है। समझिए ना, ज्ञानवंत के भोग नजरा हेतु है, अज्ञानी को वही बंद फल देतु है, यह अचरज की बात ये नहीं आवही, बूझे कोई शिष्य गुरु समझा वही। अज्ञानी के भोग नजरा के कारण है और अज्ञानी के वही भोग बंद के कारण है, वही भोगों की बात है। वो पांच इंद्रियों के भोग माने खाना पीना उठना बैठना भोगना, और वैसे ही एक से ही हो तब तो वो तुलना होगी ना। जैसे अपन ने पश्चाताप में लिखा ना कि धोबिन को भी ये मानना पड़ेगा कि कोई जबरदस्ती उठा ले गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और नहीं तो सीता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों, मैंने वो तुलना करनी है ना, तो वही समझे ना, भाव लेना पड़ेंगे उसी टाइप के है? अंतर सिर्फ श्रद्धा का रखने का है। तो ज्ञानी की भूमिका में जो भाव होते होंगे तभी तो ज्ञानी के होंगे ना, वो भाव और वो क्रियाएं, तो वही अज्ञानी की क्रिया को पकड़ना वही ज्ञानी की क्रिया। जब अपने पूजा पाठ पकड़ा, ज्ञानी भी एक कर रहा और अज्ञानी भी कर रहा, और एक ही क्रिया, अब एक कम बंद कर रहा है ज्यादा बंद कर रहा। अभी तक ये बात तो लोग समझाते रहे हैं, बहुत से लोग कि वो घर में रसोई खाना खाते हैं, चार आदमी एक थाली में खाते हैं, लेकिन एक को कम होता है, एक को ज्यादा होता है, एक को जब नहीं होए तो उसे पता चलता है, तो वो तो मात्रा की बात है। यहां तो बंद एक को कम होता है एक को ज्यादा है की बात नहीं है, एक को नहीं होता है और एक को होता। उदाहरण समझ में आया ना, अंतर समझ आया ना उदाहरण का। शिष्य द्वारा इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करने पर गुरु जी उसे समझाते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथाओं में दिया जाएगा। ये गाथाएं अपन ने पढ़ी अभी, क्योंकि ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमय ही होते हैं, क्योंकि अज्ञानमय भाव में से अज्ञान भावमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञान के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। देखो इसमें भी ज्यादा नहीं खोला, बहुत संक्षेप में निपटा दिया। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से कोई भी भाव में क्या है, में जो कोई भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। ये तो तर्क देते हैं ना, अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं किया उसने, इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय ही हैं, और ज्ञानियों में जो भी भाव होते हैं वे सभी ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करते हुए ज्ञानमय ही होता है, इसलिए ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल हूबहू लिख दिया, इतना बस उनकी न्याय की भाषा में लिख दिया। अब देखो, अब जयसेन अपन सहयोग कर रहे हैं, यानी जयसेन जो 700 वर्ष पहले हुए, अमृतचंद के 300 वर्ष बाद, जब ना पांडे राजमल जी थे ना बनारसी दास, कोई नहीं था, तब उनके दिमाग में खड़ा हुआ कि मजा नहीं आया, ऐसा कहने से मजा नहीं आया, तो उन्होंने एक लिया। देखो आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, इस आगम वचन का स्मरण दिलाते हुए समझाते हैं। क्या उनने ये पकड़ा कि भैया वो सोने के गहने का उपादान तो सोना है, सुनार थोड़ी है। क्या सुनार को काय को लपेट रहे हो? वो ये कहते हैं कि ज्ञानी उपादान है काय के, वो जो भोग रूप क्रिया भी हो रही है ज्ञानी के, तो वो भोग क्रिया जाने दो, भोग रूप के भाव हो रहे हैं उनका उपादान तो ज्ञानी ही है ना, और ज्ञानी के भाव अज्ञान में होते नहीं है। तो उनने एक उपादान निमित्त का पॉइंट उठा करके इस बात को उस गली उतारने की कोशिश की। सुनो, उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, इस आगम वचन का स्मरण दिलाते हुए यह समझाते हैं कि ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। जिसमें निश्चय रत्नत्रय रूप ज्ञानमय भावों से मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है। क्यों? जो का बीज बोने पर जिस प्रकार बासमती चावल पैदा नहीं होते, ये वितरक उदाहरण दिया, ऊपर सिद्धांत बताया था और उदाहरण कौन सा दिया, वितरक की उदाहरण से भी वे अपनी बात पुष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि अज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। ये वो ज्ञानियों के लिए वो दिया ऊपर का और अज्ञानियों के लिए ये दिया। अब सुनो, इन गाथाओं में टीका के बाद अम्बेचंद जो छंद लिखते हैं उसमें भी इसी बात को उन्होंने दोहरा दिया। बस जो गाथा में कहा कि ज्ञानिनो ज्ञान निर्वित्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वे प्रज्ञान निर्वित्ता, देखो ये ना, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान से बने हुए। अभी इसका प्रज्ञानुवाद पढ़ो। देखो ये छंद का अर्थ तो दो लाइनों में ही आ गया है ना, इसलिए इसका मतलब एक दोहा पर्याप्त था कि एक सुर था। अनुष्ठुप छंदों का जहां तक मैंने अनुवाद किया है उसे दोहा और सुरठा में निपटाने की कोशिश की है। अब ये इसका भाव तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जयसेनाचार्य की जो बात थी वो भी मैं इसमें डालना चाहता था। क्यों? कि जब आप अकेला कलश बद्यानुवाद पढ़ेंगे, जैसा कि इन्हें कलश टीका लिखी कि नाटक समय सार है, तो वो आत्मख्याति टीका तो पढ़ेंगे नहीं, तो उस वक्त उस आपके दिमाग में वो बात क्लियर नहीं होगी। इसलिए नेत्य की दो लाइनों में जयसेन ने जो दो उदाहरण दिए वो अपन ने इस छंद में डाल दिए। एक एक छंद की अपन सोचेंगे ये यहां क्यों किया, कैसा किया, तो अपन आपको ही पता चलेगा क्यों कैसे हुआ। आप समझे ना, निरर्थक नहीं कि जगह थी, जगह कैसी थी, जगह तो बनाई गई है, हम दुआ लिख देते तो जगह नहीं रहती है। छंद तो सब तरह के होते हैं ना, लेकिन उपादान के समान कारण होते हैं वो पहली पंक्ति है, और नीचे जो बोने पर जो ही पैदा होते हैं उसमें लगा जो बोने पर बासमती चावल पैदा नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव बनाया अपन ने, पॉजिटिव ही रहने दिया, जो बोने से जो ही पैदा होते हैं और उपादान के समान कारण होते हैं, इसलिए ज्ञान ज्ञानी उपादान है, इसलिए ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं, और क्योंकि वो ज्ञान बोएंगे तो ज्ञानी उगेगा, ऐसे ऐसे अज्ञानी का समझ लेना। आप समझिए ना, देखो क्या ज्ञानी, ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि। देखो जो भी अध्यात्म का प्रकरण है उसमें ज्ञानी शब्द का 99% अर्थ सम्यक दृष्टि होता है और अज्ञानी का मिथ्या दृष्टि होता है। 1% में और बातें जान देना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि गणधर देव भी कहते हैं कि हे भगवान कहाँ तुम्हारा केवल ज्ञान, कहाँ हमारा ये अल्प ज्ञान, हे गुरु हम तो अज्ञानी हैं। वहां पर कौन सा अज्ञानी है? वे अपने को मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, पर केवल ज्ञान नहीं है, सिर्फ ऐसे अज्ञानी। क्या आप समझे ना, समझ गए ना, केवल ज्ञान नहीं है सिर्फ ऐसे अज्ञानी, तो वहां ऐसा आएगा। लेकिन यहां तो कोई भी प्रकरण चलेगा, ज्ञानी माने सम्य दृष्टि और अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि। वो कह रहे मिथ्या दृष्टि उपादान हो तो मिथ्या सारे भाव मिथ्यात्मय होंगे। इसको एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि एक घड़ा ओंधा रख दिया तो उस पर जितने घड़े रखे जाओगे ओंधे ही रखना पड़ेंगे, ओंधे घड़े पर सीधा घड़ा रखना संभव ही नहीं है। रख के देखना गोल होता है ना, फिर टिकेगा ही नहीं। मोह होता है, इसकी गोलाई में ऐसी नोक होती है, वो आसानी से टिक जाएगा कि नहीं टिक जाएगा। एक घड़े पे नहीं, सीधे घड़े पे सारे घड़े सीधे होते हैं और ओंधे घड़े के ऊपर रखे गए सारे घड़े ओंधे होते हैं, समझ गए ना। इसलिए ज्ञानी की सब बात ज्ञानमय के खाते में जाएगी और अज्ञानी की सभी बात अज्ञान के खाते में जाएगी। देखो माँ के हृदय में बहुत अधिक प्रेम अपने बच्चों से है, नहीं होता है, माने जनरल नियम है। अभी हमने देखा कि सामने वाले बच्चे को अपने इसके बच्चे ने मार दिया और उसे थोड़ा खून निकल आया, वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया। वो माँ आई चिल्लाती चिल्लाती और सारी मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गई और सब बात हो गई। अब आप समझ रहे ना, वो माँ खूब अच्छी तरह जानती है कि ये लड़का पड़ोसी का बहुत उद्यमी है, उसने ही कोई गड़बड़ की है, ये अपने आप ही गिर गया है। वो चिल्ला रही है, वो बच्चा कह रहा है कि मैंने धक्का नहीं दिया, ये तो अपने आप ही गिरा है, इसे चोट लगी है, क्यों सब जानती है, पक्का भरोसा भी है उसे। तो भी जाकर दो चांटा पकड़ देती है और तुम्हें ऐसा करेगा तो ये करूंगा ऐसे एकदम ऐसे करती है, इतनी धमकियां देती है जैसे एकदम सीधा जेल में ही डाल देगी, नहीं तब की बार तो मालूम फांसी पे चढ़ा देगी, क्या करेगी, क्यों है। और घर पकड़ के घर के अंदर ले जाती है, सब चले जाते हैं चुपचाप, शांति से खत्म हो जाती बात। फिर लड़का को समझाती है नहीं करो मत, शरीर में ऐसा तेरे को नहीं करती तो बे लोग मारते, इतना झगड़ा बढ़ जाता। अब वो समझती इस वक्त इस बच्चे को बचाने का उपाय इसको पीटना ही है, क्यों माँ खुद ही पीट रही, डांट रही, इतनी कर रही, घसीट के ले गई क्या, और उसमें से वो कोई पीट ना दे उससे लाके घर सुरक्षित घर में लाना, क्यों। अब वो वहां इतना व्याख्या नहीं दे सकती थी, बच्चे को वहां नहीं समझा सकती थी। अब ये उसे अपनी अकल से ही समझना पड़ेगा कि यदि ये मेरे को पीट रही है, इतना स्नेह करती है, तो इसमें भी मेरा कोई भला होगा। अपन बोलते ना क्या, वो बारीकी में नहीं जा सकते, ऐसे यहां कह रहे हैं कि तुम बारीकी में मत जाओ, बस ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है, क्यों उपादान के समान कारण कारज होता है और जो वो होने पर जो तो ही। आप समझ गए, आप ये दो पंक्तियां इसलिए जोड़ी क्योंकि इतनी कहने से काम नहीं चलता था, उतने बात स्पष्ट नहीं होती थी। देखो ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सब, वो गुस्सा कर रहा, गालियां दे रहा, वो भी ज्ञान से बनी हुई है, वाह अच्छा न्याय है तुम्हारा है? तो उसे समझाया कि जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। देखो हो गया। इन गाथाओं और कलश का भाव यह है कि चतुर्थादि गुणस्थान वर्ती ज्ञानी जीवों के चारित्र की कमजोरी से जो भूमिकानुसार रागादि भावों का प्रणमन पाया जाता है, देखो वह प्रणमन भी ज्ञानमय भाव ही कहलाता है। कितना क्लियर है, क्योंकि ज्ञानी जीव उन रागादि के होने पर भी अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्वादि का बंध नहीं होता। चारित्र महोदय संबंधी जो भी बंध होता है वह अत्यंत अल्प होता है, अनंत संसार का कारण नहीं होता, इस कारण उसे बंध में गिनते ही नहीं, ये इसका अर्थ है। ये भाव जब तक इतना नहीं खोलेंगे तब तक इन गाथाओं में का पूरा मर्म हमारे ख्याल में नहीं आएगा। अब इन छंदों का जब तुम पाठ करते हो ना यहां, तब ये सारी भाव तुम्हारे ख्याल में आना चाहिए क्या कह रहे हैं, और जब इनका अर्थ करना पड़े किसी सभा में तो हमारे ख्याल में आना चाहिए। हमें पीयूष ने वहां पर प्रदर्शन किया ना, हमारे प्रदर्शन के पहले वेरिफिकेशन लिया और बराबर 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 बोल रहा था, दो दिन बोलता रहा, फिर भी मुझे को ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ लोगों के गले पड़ नहीं रहा कि पड़ रहा होगा, तो इसको ऐसा असंतोष लग रहा है कि जैसे कोई बात हमने गले नहीं उतार पाई क्या। तो मैंने अपना प्रश्न अपना विषय छोड़ के दो लेने कहीं कि भैया जी इस प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञानवंत के भोग नजरा हेतु है, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु है, यह अचरज की बात समझ नहीं आ भाई पूजे इसका उत्तर है। तो एक नंबर लोगों के धन सी उठ गई, आप सुनिए ना माने कैसे वो विषय का स्पष्टीकरण होगा। यदि हम आपको कहोगे क्या फर्क पड़ गया इतनी सी बात में, क्या फर्क पड़ गया इतनी सी बात में, क्या फर्क पड़ गया है? देखो इन बातों को बहुत कुछ स्पष्टीकरण पांडे राजमल जी ने कलश टीका में इस कलश के भावार्थ में लिखा है। देखो इस कलश के भावार्थ में जो लिखा है उस पर ये सारा महल खड़ा हुआ है बनारसी दास का। क्या लिखा उनने, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्य दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक से हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। ये भी कोई आसान नहीं है, द्रव्य का परिणमन भेद है क्या। गुरुदेव से समझाते बहुत अच्छी तरह से रस ले लेकर के, उनको एक कलश्ती का बहुत पसंद थी, उसमें बहुत व्याख्यान किए उनने और बहुत विवरण। अब विवरण माने तथा ही, संस्कृत की तथा ही इनका विवरण माने उसी बात को हम और खोल कर कहते हैं। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप है अथवा विचार रूप है तथा वृत्क्रिया रूप है अथवा भोग भोगाभिलास रूप है अथवा चारित्र मोह के उदय क्रोध मान माया लोभ रूप है, वह सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है। ये 500 वर्ष पहले सबसे पहले क्लियर उनने लिखा, उसकी बहुत कीमत है जिसने सबसे पहले किया है। भाषा कितनी कमजोर थी उस वक्त, जो भाव समझ गया जाना फिर उसे हिंदी भाषा में समझाना पसीना छूटता। आज अपन लोगों को परेशानी होती है भाषा के संबंध में, कारण कि जो कोई परिणाम है वह संबंध नजरा का कारण है, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है। हम क्या करें, अब ऐसा है कि वह नजरा होती है। आगे समय हो गया लेकिन पहले मैंने आप लोगों को समझाया है कि वो ज्ञानी के भोग के काल में भी नजरा कैसे होती रहती है। वो है ना असंख्य गुणी नजरा होती ना, तो उसमें चौथे गुण स्थान में भी असंख्य गुणी होता है, फिर पांचवें में होती है, तो वहां भोग का काल भी है, युद्ध का काल भी है, और वो उस वक्त भी असंग गुणी चलती रहती है। तो हो तो रही दूसरे कारण से, लेकिन हो रही ना, तो उसको यहां इस पर घटित करते हैं वो काली बाकी वादा।